اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 7 میں، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، البتہ ہے بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں یا اس کے معاملے میں نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے، یعنی یہ قصہ پوچھنے والوں نے پوچھوا تو لیا ہے. یہاں سائلین سے کون مراد ہے؟ نمبر ایک مشرکین مکہ، جنہوں نے یہود کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا تھا. ان کے لیے کیا آیت تھی؟ آیات میں نشانی کیا تھی؟ نشانی یہ تھی کہ دیکھو آج تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دینا چاہتے ہو نا، نہیں دے سکو گے، کیونکہ یوسف کے بھائیوں نے بھی نقصان دینا چاہا تھا اور نہیں دے سکے. اور سائلین سے اگر آپ ڈائریکٹ مراد یہود مدینہ لیں، جیوز آف مدینہ، جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا تھا، تو ان سے اس میں نشانی، ان کو کیا نشانی دکھائی گئی؟ کہ دیکھو بنی اسرائیل نے جو سلوک یوسف علیہ السلام سے کیا تھا، اب اگر وہی سلوک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہو تو پھر انجام مختلف نہیں ہوگا. یہاں آپ دیکھیے کہ قرآن کتنے نپے تلے ڈھکے چھپے انداز میں نصیحت کرتا ہے کہ اس نصیحت کے بعد واقعی انسان اپنا محاسبہ کرنے والا بن جاتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر سوال جو ہوتا ہے وہ جواب لینے کے لیے نہیں کیا جا رہا ہوتا، اس میں بس اپنے بھی کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں. خیر بات ختم. پتہ نہیں کتنے دن گزرے، ہم کہیں گے اچھا رات کو یوسف نے خواب دیکھا، پھر اگلے دن باپ نے یہ بات دی، اور اگلے ہی دن پھر یوسف کے بھائی باپ کے پاس آگے. نہیں، قرآن خاموش ہے. اس قال یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا. اب بھائیوں کی گوسپ، باتیں جو آپس میں بیٹھ کے بھائی باپ کے خلاف کر رہے ہیں. اب یہاں سے آپ تقابل بھی کیجئے گا، یوسف علیہ السلام کی بات یا اباتی، میرے پیارے ابا جان، ادب سے بات کرتے ہیں. لیکن اب ذرا بھائیوں کا اخلاق دیکھیے، آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. اس قالو، جب وہ کہنے لگے، کون؟ یوسف کے باقی بھائی، اکیلے میں بیٹھے دکھ سکھ کر رہے ہیں. لا یوسف، البتہ یوسف و اخوہ، اور اس کا بھائی کون؟ بنجامین. نوٹ کیجئے گا، اخوہ کہہ رہے ہیں، اس کا بھائی یعنی ہمارا نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے وہ اخونا. یہاں سے آپ رشتوں کو سمجھیے، سورت یوسف ہمیں رشتوں کے جھول دکھاتی ہے. بعض دفعہ جب ہم کسی کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں نا، تو ہمارے الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیسے بول رہے ہیں. یہاں ان کے الفاظ سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ دل میں بغض رکھتے تھے. جس شخص سے آپ بغض رکھیں گے نا، آپ کبھی اس کے بارے میں اچھی بات نہیں بولیں گے. بظاہر آپ اس کی تعریف بھی کریں گے نا، تو ساتھ ہی کوئی ایک ایسا جملہ چھوڑ دیں گے کہ سننے والا دوسری طرف چل پڑے. تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی دونوں کیسے، احب الا ابینا منا، ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں ابو ان سے. کیا کر رہے ہیں باپ کے بارے میں؟ بدگمانی. اچھا، فطرتاً ویسے یہ خیال ہر پیدا ہونے والے بچے پہ پہلے بچے کو آتا ہے. آپ محسوس کیجئے، اگر آپ کا ایک بچہ ہے، بہت خوش ہے سب ہے، جو ہی آپ کی گود میں اگلا بچہ آتا ہے نا، تو وہ پہلا بچہ چڑکھانے لگتا ہے. اس کو کوئی پکڑے گا تو وہ چڑھے گا، وہ روئے گا. اور اکثر دیکھیے کہ بچے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پہ جھپٹتے ہیں، کبھی ان کی آنکھوں کو نوچتے ہیں، کبھی کچھ، کبھی ان کو یوں پکڑ کے گراتے ہیں. یہ وہی دبا ہوا حسد کا جذبہ ہوتا ہے. یہ ماں اور باپ کی تربیت ہوتی ہے کہ ایسے جذبات کو جھکا دیں، ادروائز اگر اس کو ذرا سی ہوا دی جائے تو بہت ہی زیادہ بری بات ہوگی. دوسری بات دیکھیے کہ یہاں ان بچوں کی اپنے باپ سے بدتمیزی دکھ رہی ہے کہ دیکھو جی، ہمارے ابو کو تو بس ہمارے بھائیوں سے زیادہ پیار ہے اور ہم سے نہیں. یاد رکھیے کہ جو اولاد ماں باپ کے ساتھ بدتمیز ہو، ایٹیچیوڈ پرابلم ہو، وہ ضرور ماں باپ سے بدگمان ہوگی. آج آپ کی عمر 25, 30, 40, 50 کی بھی ہو گئی ہے نا، سارے بہن بھائیوں کی عمریں اس کے قریب و قریب ہوں گی. آپ اکیلے میں بیٹھ کے ذرا ان سے بات کریں تو وہ کہیں گے بچپن سے ہاں میرے ساتھ تو ماں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. یہ جو آج میری طبیعت میں یہ غصہ ہے نا، یہ مجھے بچپن میں پیار نہیں ابو نے دیا. کوئی کہے گا ہاں وہ مجھے مار پڑتی تھی نا، اس کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا. اچھا دوسری بات اب یہاں دیکھیے کہ انہوں نے اپنے ساتھ محبت کی دلیل کیا دی کہ وہ نحنو اسبا، ہم تجھے ایک بڑا گروہ ہیں، ہم بہت بڑی جماعت ہیں، تو ابو کو تو ہم سے بہت پیار کرنا چاہیے. اسبا کا لفظ سمجھ رہے ہیں، یہ جو اعصاب ہوتے ہیں نا ہماری جسم میں، جیسے مسلس، یہ بھی وہی چیز ہے، باندھنے کو کہتے ہیں. یعنی ان کو اپنی کثرت پہ بڑا ناز تھا، بڑے بھی تھے عمر میں، چوڑے چکلے اور خوبصورت بھی تھے. کہتے کہیں کہ ہم تو بہت زیادہ بڑے ہیں، باپ کو ہم سے زیادہ پیار کرنا چاہیے، हालांकि इनको ये नहीं पता कि माँ और बाप को अपने मजबूत खुशहाल सेहतमंद बच्चे की निस्बत कमजोर मरियल और दुखी बच्चे से ज्यादा प्यार होता है। आजमा के देख लें, अपने दिल को टटोलें। आपका जो बच्चा दुख में होता है ना, उन दिनों बस आपका सारा प्यार उनके लिए होता है, सारी दुआएं, सारी तहज्जुदें, सब कुछ उसके लिए होते हैं। इनका ख्याल था कि हम बड़े होंगे तो हमसे ज्यादा प्यार है, हालांकि ये ऑपोजिट है। जब बच्चे अपने घरों में खुश होते हैं ना, माँ बाप कहते हैं बस खुश ही रहे, अपने घर से रहे। लेकिन जिस बच्ची या बच्चे को दुख होगा ना, तो रात दिन सोच उसकी तरफ होगी। कोई माली तौर पर कमजोर है तो माएं छुपा छुपा के उसके लिए चीजें भेज रही होती हैं, तो ये इनकी गलत फहमी थी। फिर आगे जरा जुमला तो देखिए, इन्ना अबा न लफी दलाल मुबीन। तर्जमा करने को दिल नहीं चाह रहा, इतना वल्गर जुमला है। कहते हैं बेशक हमारा बाप तो अलबत्ता दूर की गुमराही में है। बाप कौन है? नबी, और नबी का बेटा, और आने वाले नबियों का बाप। और क्या कहते हैं कि हमारा बाप जो है ये भटक गया, इसको तो पता ही नहीं कि हमसे ज्यादा प्यार करना चाहिए और इनसे कम। हालांकि आप देखिए कि इनको क्या चाहिए था, इनको चाहिए था कि अपना रवैया देखें, हम अपने ऊपर गौर करें कि हमारे अंदर क्या कमी है। आप देखिए कि बाज़ औक़ात हमें प्यार नहीं मिलता, हम कहते हैं मेरी तो कोई भी इज्जत नहीं करता, वजह क्या है? ये नहीं हम सोचते, कोई ना कोई तो बात होगी ना कि कोई दूसरे को तो मानता है, मुझे नहीं मानता। हर जिंदगी के दौर में, चाहे आप बचपन में हैं, जवानी पे हैं, बुढ़ापे पे हैं, मतलब बाज़ लोग कहते हैं कल तक मेरी सास ने कोई मेरी इज्जत नहीं की और आज मेरी बहू मेरी इज्जत नहीं करती। आप अकेले बैठ के सोचिए, क्या मेरी सास भी गलत थी तो मेरी बहू भी गलत है? अच्छा, मेरी भाभियाँ भी मुझसे खुश नहीं? शायद मेरे इतने अच्छे मामलात में कोई एक मेरी आदत ऐसी हो सकती है जिसने मुझे दूसरों की मोहब्बत से दूर रखा हुआ है। तो अपना मुहासबा करना चाहिए, कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ हमें एक इबलीसी रवैया भी दिख रहा है, और वो क्या कि जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से इबलीस को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाला था, तो उसने क्या कहा था? फ़बीमा अगवैतनी। आप पढ़ें सूरत अल आराफ में पूरा किस्सा डिटेल से, और सूरत बनी इसराइल में, दोनों में बहुत डिटेल से, वैसे 9 दफ़ा ये किस्सा पूरे कुरान में आपको मिलता है। क्या इसकी वजह से तूने मुझे जन्नत से निकाल दिया? ब्लेमिंग। ये एक सोच जो कल तक शैतान की थी, आज इनकी बनी कि हम तो जी बड़े अच्छे थे और हमारे माँ बाप ने हमारी कदर नहीं की। जो रवैया शैतान का लह के साथ था ना, वो बदतमीज़ किस्म की औलाद का माँ बाप के साथ होगा। और हम सब अपने लिए अमल की बात लें, कभी भी अपनी माँ की, अपने बाप की, अपनी सास, अपने ससुर, इसी तरह अपने बड़ों की बुराई किसी दूसरे से ना करें। बस लड़कियां ससुराल में अपने नंबर बनाने के लिए अपनी माँ की बुराइयां करती हैं, और मैके की हमदर्दियां देने के लिए सासों के और नंदों के बुरे रवैये को पेश करती हैं। ऐसा कभी ना कीजिए, क्योंकि कांटे देकर कभी फूल नहीं मिलेंगे। और ना कभी दूसरे बहन भाइयों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करें। और ख़ास तौर पे एक बात, बड़े ही एहतराम और बड़ी मोहब्बत से बुजुर्ग खवातीन के लिए, जिस उम्र में इंसान खुद को कमजोर महसूस करता है, कुछ अपने अंदर कमी भी आ रही है, उनकी बस वह क्या आदत होती है, जो बच्चा या बच्ची पास बैठे उनसे दूसरों की बुराई शुरू हो जाती है। जो बहू साथ रही उसके सामने दूसरों की बुराई, जो जरा पूछ लेता है दूसरे की बुराई। ये कभी ना करें। देखिए, एक माँ होती है जो भाई बहनों में मोहब्बत डलवाती है या फूट डलाती है। जब आप अपने एक बच्चे को ये कहते हैं ना, हाँ वो तो ऐसा है, तुम ऐसे हो, अच्छा दो तरह की बातें हैं, यानी ये भी चूंकि हमने बात की है ना तरबियत औलाद के लिए, इसलिए करना लाजिम है। एक माँ के पेट से बच्चे पैदा होते हैं, तबीयत का फर्क है, कोई बड़ी नरम तबीयत का है, कोई गुस्से वाला है, कोई दिल का खुला है, कोई बखील है। अब एक माँ ने पैदा किया ना, कर लेती हैं अच्छे बच्चे पैदा, बच्चों ने तो नहीं कहा था मैं ऐसा बनाऊं, ठीक है अब कर लिया। अब हुआ क्या, फितरी बात है, एक बच्चा तेज होता है, एक्टिव होता है, बहुत स्मार्ट माइंड का होता है, एक थोड़ा ढीला भी होता है। अच्छा, वो दोनों की शख्सियत को कैसे मजरूह करती है? जो ढीला है ना उसको हर वक्त ताना देगी, उसको भाई को देखा वो कितना एक्टिव है, तू तो ढीला है, तूने कुछ नहीं करना, तुम तो बस ना काम रोगे, इसका कॉम्प्लेक्स इतना बढ़ा देती है कि वो कुछ कर ही नहीं पाता। इसके बरक्स वो जो दूसरा बच्चा जरा एक्टिव स्मार्ट है, वो बाज दफा को ऐसे काम भी कर आता है जो माँ को बाप को अच्छे नहीं लगते, तो उसको डांटते, तू बड़ा चलाक है, तू बड़ा होशियार है। दोनों को ही आपने पानी में डाल दिया। कभी ऐसा ना करें। कभी अपने किसी बच्चे की आप बुराई किसी दूसरे से करने लगे तो सोचें, पैदा तो अल्लाह ने किया लेकिन मेरे बतन से निकला है। वही बात है, अपने पेट से कपड़ा उठाएंगे तो दूसरों का पेट दिखेगा। खुद इसलाह करें। अच्छी माँ कौन है? बच्चों को स्टडी करें। मेरा ये बच्चा दबाव है, बस इसको ऊपर भरे, चलो मेरा बच्चा, चल चल कर सकते हो, शाबाश। छोटी छोटी बातों पर उसकी तारीफ करें, उसको प्रोमिनेंट करें। और जो बहुत लगता है कि तेज है और हो सकता है कि उसकी ये अकल जो है उसको होशियार ही ना कर दे, यार ना कर दे, उसको जरा सा दबा के रखें। यही सोच हर रिश्ते में रखिए। शौहर आपका ऐसा मिल गया, किसी को बहुत होशियार शौहर मिल जाते हैं, किसी को बहुत सीधे साधे मिल जाते हैं। कभी किसी की पर्सनैलिटी को खराब ना करें तकाबुल करके, फलां तो ऐसा है आप ऐसे नहीं है। तो ये रिश्तों में इंसान जब अपने नाम से करता है तो उसको अच्छा लगता है। फिर आप देखिए कि यूसुफ के और भाइयों के बाप से बात करने के अंदाज से पता चलता है कि इनके दिल में वाकई क्या इज्जत थी, क्या रिस्पेक्ट थी। एक चीज जो थोड़ी सी साइड इश्यू है, लेकिन शायद अगर आप में से किसी ने कुरान पढ़ा होगा डिटेल से तो उनको ये मिलेगी कि जो रवैया हमें यहाँ यूसुफ के भाइयों का दिख रहा है ना, कल यही रवैया बनी इसराइल का हो गया। क्योंकि ये जो यूसुफ अलैहि सलाम के बाकी 10 भाई है ना, इनसे बनी इसराइल चली थी। आगे जाके इनकी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं बात आएगी। मसलन आप देखिए कि इनके रवैये में क्या बदतमीजी है। ये बाप के सामने बदतमीज हुए, बनी इसराइल नबियों के सामने बदतमीज हो गई। कहीं या मूसा कह रहे हैं और कहीं कह रहे हैं कि अल्लाह नसबिर अला तौमिन वाहिद, सूरत बकरा में इसकी बहुत सारी डिटेल है। फिर आप देखिए कि इनके रवैये में हमें तकब्बुर दिख रहा है। नहनु उस्बा, हम बड़े हैं। इसी तरह बनी इसराइल क्या कहते हैं, नहनु अहिब्बाहु, हम अल्लाह के लाडले और प्यारे हैं। फिर इसी तरह देखिए कि इनके रवैये में तीसरी चीज हमें दिख रही है कि अपना कसूर कोई नहीं मान रहे, और उन्होंने भी अपना कसूर कभी नहीं माना। वो कहते हैं कि लन तमस्सन नारु इल्ला अय्यामा मादूदा, हम नहीं आग में जाएंगे, गए भी तो चंद दिन में जाएंगे। चौथा रवैया इसमें हमें इनका देखता है कि अपनी तादाद पर फख्र, हम बहुत हैं। आज भी आप देख लीजिए कि बनी इसराइल के रवैये में है वो मुट्ठी भर पूरी दुनिया को ग्रैब किए हुए, क्योंकि उनको अपनी ताकत पे बड़ा मान है, बहुत अच्छा लगता है उनको। फिर एक इनका मान क्या है कि हम ताकतवर हैं, हम सुपर पावर हैं, आज भी यही दावे हैं। तो क्या पता चला कि खून का असर होता है, नस्लों से नेकी भी फूटती है और नस्लों से शर भी फूटता है। बाप के बारे में ये बुरी बातें कर रहे थे। अब डर है कि अब आप इसको अपने तौर पे ले ना, कि एक महफिल सजी हुई है और कहीं दावत है, अंदर चाय के कप रखे हुए और सारे भाई बैठे कुड़ रहे हैं, जल भुन रहे हैं कि देखो अब्बू को तो हमसे प्यार ही नहीं, ये है वो है। करो क्या कहते हैं, उख्तलू यूसुफ, यूसुफ को कतल ही कर डालो। इसको कहते हैं छोटे मसले का बड़ा हल। छोटी छोटी बातों को भतंगड़ बनाकर उसका इतना बुरा इंजाम करना कि अल्लाह की पनाह। यही सोच बास लड़कियों की ससुराल के मामले में होती है। शादियों के ससुराल में गई, छोटे छोटे मसले तो होंगे, बल्कि बड़े भी हो सकते हैं। अब वो छोटे छोटे मसलों का बड़ा हल क्या निकालती हैं, शौहर को माँ के खिलाफ कर दो, अलग हो जाओ, बहनों के खिलाफ कर दो, उसके खिलाफ, उसके खिलाफ, चुगलियां इधर की उधर खा लो ताकि ये अलग हो जाए और मुझे मोहब्बत मिले। यही बात ये कह रहे हैं कि अवित रहू, या तो इसको फेंक दो, क्योंकि अर्दन किसी दूर जगह में जाके फेंक दो, यखलु लकुम वजहु अबीकुम, ताकि तुम्हारे बाप की तवज्जो तुम्हें ज्यादा मिल सके। यानी बाप की मोहब्बत को छीन कर बाप से मोहब्बत लेना चाहते हैं। क्या यही गलती लड़कियां नहीं करती? शौहर की प्यारी माँ, शौहर के बहन भाई, उनके घर वाले जिनके साथ वो 25-30 साल रहा, उसको कटवा दो सबसे ताकि वो मुझसे प्यार करे। नफरत देके कभी मोहब्बत नहीं मिलती। मैं कहती हूँ आप सिर्फ शादी होने से पहले लड़कियों को सूरत यूसुफ की तफसीर करवा दें, रिश्ता करना निभाना आ जाएगा। कि ऐसा नहीं हो सकता, छोटा सा मसला था, तुम उसके ऊपर इतने बड़ी बातें करने आ गए। और देखिए गिल्ट तो होता है गलत काम का, कि भाई कर क्या रहे हैं, भाई के कत्ल की या भाई को दूर करने की बातें, तो दिल में गिल्ट तो आया होगा, नफ्से लवामा ने पुकारा होगा, कर क्या रहे हो, शर्म करो, ये काम करोगे तो साथ ही तसल्ली दे रहे हैं, वतकून मिन बादिही कौमन सालहीन, हाँ इसके बाद नेक लोग बन जाना। इसको आज हमारे यहां क्या कहते हैं कि गुनाह कर लो आज, नेकी करेंगे कल। आप देखिए कि इस एक गुना के बाद नेकी कर लेंगे। आज हमारे में से कुछ लोगों का ये रवैया होता है, बस आज फजर छोड़ दो, वो रमजान तो आने ही वाले हैं ना, फिर नेक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अब हज पे तो जाना ही है, जो गुना करना है कर लो, बच्चे की शादी का मौका कर लो कर लो, फिर वतकून मिन बाद ही कौमन सालेहीन। एक सिस्टर की बात भूलती नहीं, बहुत साल पहले से सुनी हुई है। जंग थी, एक दो छोटे बच्चे थे, तो बड़ी लाड से हंस कर, तो वो जोक में ही रही थी बात, लेकिन बात दिल को लग गई मेरे। कहने लगी नहीं अभी नहीं हज करना, क्यों? कहती हज करके आएंगे फिर वही गुनाह करेंगे, दुनिया में लग जाएंगे तो पैसे भी जाया हो जाएंगे, हज भी जाया। हज करेंगे बूढ़े होकर जिसके बाद बस मरना है, क्योंकि हज पे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो मैंने उस वक्त भी उनसे ये कहा कि आइडिया तो आपका बड़ा अच्छा है, अकलमंद है, बिजनेस के नाते से तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन ये दुआ तो करें कि अल्लाह आपको बुढ़ापे तक जिंदा रखे। हाँ, तो आप और मैं, हम सब इस चीज पे गौर करें कि क्या आज हम भी गुनाह करके खुद को यही झूठी तसलियां तो नहीं देते फॉर अ गुड कॉज। नाम क्या लेते हैं? सोशल वर्क का है, क्या वो चैरिटी फंड है, क्या है वो जलजला जदगान की मदद के लिए, और कर रहे हैं उसमें सारे नाफरमानी के काम, क्योंकि भाई फॉर अ गुड कॉज, कोई बात नहीं, ये पैसा इधर जाएगा उधर जाएगा, क्या इससे अल्लाह राजी होगा? याद रखिए ऐसा कभी नहीं होता, जो नेकी है ना वो नेकी ही होगी तो ये होगी। एक और लोग बहुत धोखा देते हैं खुद को, कहते हैं भाई चूंकि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा तो हम भी फिर किसी को नहीं दे रहे। ऐसा नहीं करना, तौबा आज गुनाह कल, नेकी आज कीजिए कल बाद में करें। आज नफ्स की सुन रहे कल अल्लाह की सुनेंगे, कहिए नहीं आज अल्लाह की सुननी है फिर करेंगे। कई लोग बस करनी है तौबा, जरा बस ये घर की शादी खत्म हो जाए, इसमें जरा सारी रस्में कर लें, बस इसमें जो करना है कर करा लें, वो कर लें ये बाद में। ऐसा नहीं, गुनाह को अर्जेंट लेते हैं और नेकियों को पोस्टपोन कर देते हैं, ये रवैया दुरुस्त नहीं है। हर एक सोचे, बल्कि हदीस में तो यहां तक आ जाता है कि इंसान कभी भी अगर ये सोच के गुनाह करे ना कि मैं बाद में इसकी तौबा कर लूंगा, तो वो उस गुनाह की तो तौबा और मुश्किल से होगी, अल्लाह को धोखा दे। तो ये ऐसे ही है कि जैसे कोई चोर चोरी करे और साथ ही के कोई बात नहीं ये चोरी कर लूं, इसके बाद थोड़े दिन जेल में जाऊंगा फिर ठीक हो जाऊंगा, पुलिस को कि हाँ हाँ मैं चोरी कर रहा हूं डाल दो मुझे 3 माह जेल में ताकि फ्री खाना भी मिल जाएगा, उसका जुर्म बढ़ जाएगा ना, ये सरकशी है। अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे। अब गीबतें बुराइयां ये तो चली रही थी, इतने में क्या हुआ? अच्छा, यहां फिर बाइबल जो है वो हजरत यूसुफ पे इल्जाम लगाती है, चूंकि वो उनकी लिखी हुई है ना, तो वो यूसुफ के बारे में क्या लिखते हैं कि ये यूसुफ के भाई इसलिए उनके खिलाफ थे कि वो इनकी चुगलियां बाप को लगाते थे। तो ये अंदर का बुगज है जो दिलों में आ जाता है, बाइबल लिखी भी उन्होंने जो खुद ये बातें करते हैं, भाइयों ने भाई के बारे में खिलाफ बात की। अब बात तुम्हें बात निकली, قال قائل منهم, कहा कहने वाले एक ने, यानी बहुत सारे भाइयों में किसी एक भाई ने कहा, क्या कहा? ला तक्तुलु यूसुफ, ना कत्ल करो यूसुफ को। अब ये कौन सा भाई था? रिवायात में आते इसका नाम रुबैल था, सबसे बड़ा था। इसने निस्बतन अच्छी बात की, क्योंकि भाई तो कत्ल के इरादे किए बैठे थे ना, ये क्या कह रहे हैं देखो कत्ल ना करो, आखिर भाई है और कुछ दिल को खिंच पड़ी होगी। यानी इसने ये कह दिया कि ला तक्तुलु यूसुफ, हाँ मगर चलो कुछ करना है ना तो वालकूहु फी गयाबतिल जुब, हाँ फिर डाल दो इसको किसी कुएं के अंधेरे में, किसी अंधेरे कुएं में डाल दो, होगा क्या? यल तकित हुबादुस सैयारती, ले जाएगा इसको कोई एक काफला, इन कुन तुम फाइलीन, अगर वाकई तुम करने वाले हो ये काम। दूसरे भाइयों की निस्बत अच्छी बात की लेकिन पूरी बात नहीं की, ये कहने की बजाय कि इस बड़े गुनाह से तो बच जाओ लेकिन छोटे गुनाह कर लो, इसको क्या करना चाहिए था कि देखो ये भी गुनाह ना करो बल्कि इसके बदले में बड़ी नेकी करो। दूसरी चीज ये कि इसने मुकम्मल तौर पर नहीं अनिल मुनकर नहीं किया, अधूरा किया। अब आप जरा देखिए, कभी हम भी ऐसा करते हैं, बहुत दफा करते हैं, चलो भाई ये ना करो ये तो कर लो। मसलन जैसे बाद लोग कहते हैं भाई शुक्र है हम ये नहीं करते ये तो करते हैं ना, चले शुक्र करें गले में तो हम लेते हैं ना, दूसरों से तो अच्छे हैं, भाई कोई बात नहीं फर्ज तुम्हें पड़ती हो ना, नफिल नहीं पड़ती। कभी भी छोटी नेकी पे माइल ना हो, क्योंकि इंसान के दामन में कुछ भी नहीं है। बाप का दिल दुखाकर बाप की तवज्जो लेने वाली बातें कर रहे थे, अच्छी बात नहीं। यहां जो लफ्ज है ना गयाबत, इसको देखिए ये बड़ा दिलचस्प लफ्ज है, इसका रूट वही है जो गैब का रूट है, गैन या बाप। गयाबा कहते हैं ऐसी चीज जो किसी को छुपा ले, कुएं की तय भी इससे मुराद है, और कब्र को भी गयाबा कहते हैं क्योंकि वो इंसान को पूरे का पूरा छुपा लेती है। इसी तरह कुएं के लफ्ज के लिए अरबी में बेर आता है, बेरे माउना का लफ्ज सुना होगा आपने सीरत पढ़ते हुए, लेकिन यहां जुब आया है। फर्क क्या है? जुब कहते हैं कच्चे कुएं को, जिसकी कुमेंट भीड़ नहीं है कुछ नहीं और पानी भी नहीं है, यानी भाइयों ने कहा कि पानी वाले नहीं जाके किसी पुराने खुश कुएं में इसको डाल दो, खत्म कर दो कहानी, ये पुराने कुएं में जब चला जाएगा होगा क्या? यल तकित हो, लुकता कहते हैं ऐसी चीज को जो गिरी पड़ी हो, कोई भी आएगा बेकार चीज समझ के ले जाएगा। सैयारा, सैयारा का लफ्ज है ना, ये आज भी हम बोलते हैं सैयारे हैं, सितारे और सैयारे। इसी तरह अरबी जुबान में गाड़ी को सैयारा कहते हैं, घूमने वाला, स्पिन के मानों में स्पिनर। गाड़ी को भी, कि कोई भी राह चलता बंदा आ जाएगा। मकसद ये है कि हमने तो इसको फारिग करना है ना, हमें क्या ये जिए या मरे। अच्छा अब इस पे फिर आगे कुरान खामोश है, लेकिन बात से लग रहा है कि फैसला इस पे हो गया। भाइयों को ये बात अच्छी लगी कि चलो ठीक है। अच्छा जरा इस वक्त उन भाइयों की मेंटेलिटी तो सोचिए, क्या वो ये सोच रहे होंगे हमने बड़ा गुनाह किया है? वो कहेंगे हमने बहुत नेकी की है। क्या कि हमने कत्ल तो नहीं किया ना जी, कुएं में ही डाला है ना, और अल्लाह ने बचाना होगा तो बचा लेगा। ये है शैतानी रवैया। हम बाज दफा बड़े बड़े गुनाह करके जब हमारे अंदर से वो नफ्स लवामा की चोटें पड़ती है ना, जिसको सूरत क्यामा में अल्लाह ताला ने कहा कि वह नफ्स लवामा, ये मलामत करने वाला नफ्स जब हमें चौके लगाता है और फिर हमारे गुनाह के बस सर में दर्द शुरू होता है, या हमें गिल्ट होता है क्यों इतने पैसे जाया कर दिए, ये पैसे किसी और जगह लग जाते, मैंने क्यों खराब चीज देख ली, मैंने क्यों खराब चीज सुन ली, तो फिर हम भी ये थपकियां देते हैं, बस चुप करो सो जाओ ना, वो तो नहीं किया ना, फिल्म देखी है ना, कोई ब्लू प्रिंट्स तो नहीं देखे ना, क्या हुआ ऐसे ही ना मुझे कहा करो। इस तरह झूठी तसलियां देकर इंसान अपने नफ्स को सुलाने लगता है। खैर अब आप जरा थोड़ा सा अपने माइंड को वहां लाइए, प्लॉटिंग हो गई, इरादे कितने बुरे हैं, एक मीटिंग सेट कर ली। अब आपको अपने जहन में जो चीज लानी है वो क्या है कि ये बाप के सामने पहुंच गए, और आप जरा सुनिए कि बाप के साथ क्या मामला करते हैं। कालू, कहने लगे। कौन कहने लगे? अखवाने यूसुफ कहने लगे, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान। यहां भी देखिए कि अंदाज में वो गर्म जोशी नहीं मिल रही जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदाज में थी। मा लका, क्या हो गया आपको? ला तामन्ना अला यूसुफ, आप तो हम पर यूसुफ के मामले में एतबारी नहीं करते जी, आपको तो हम पर कोई एतबार ही नहीं है। वइन्ना लहू लनासिहून, हालांकि हम तो उसके बड़े खैर ख्वाह हैं। इसको अरब क्या कहते हैं इंग्लिश में भला, कोई कहना चाहेगा? ब्लेमिंग स्टाइल। ये है आज की जनरेशंस को सिखाया गया सबक। इस ब्लेम पे अपने माँ बाप से बात करो कि वाकई वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाए। आज देखिए बस होशियार बच्चे यही कहते हैं अपने बच्चों के, दिल में इनके क्या है, भाई के एक किस्म की कत्ल की प्लानिंग है, कितना बुरा मंसूबा है, बाप से इजाजत लेने आए हैं, कुछ कहने की बजाय क्या कह रहे हैं, हाँ वैसे ये तो हमें पता है कि आप हम पर एतबार नहीं करेंगे। क्यों? ताकि बाप पहले से अंडर कॉन्फिडेंट हो जाए कि लगता है कि अब इनकी बात ना मानी तो मैं इन पे कोई ज्यादती ना कर दूं। आज बच्चे क्या कहते हैं, मुझे पता है आप मुझे पार्टी में नहीं जाने देंगी, हाँ पता है आपको पता नहीं, भला मुझ पे तो एतबार नहीं, मैंने कोई वहां जाके गलत काम करना, मुझे पता है आप मुझे सेलफोन नहीं दिलाएंगे, और मुझे पता है आप नेट नहीं देंगे, और आप मुझे आईफोन नहीं दिलाएंगे, ये वो। यानी इस तरह का स्टाइल इख्तियार करना कि दूसरा बंदा प्रेशराइज हो जाए, ब्लैकमेलिंग, बिल्कुल ठीक आपने, ब्लैकमेलिंग स्टाइल, कि अगर हमने आपकी बात मान ली तो बस आप तो ये कर देंगे। अच्छा बच्चों में आज के दौर में ये जिसको कहना चाहिए कि पूरी प्लानिंग के साथ ये सोच दी जा रही है, आप कभी अपने बच्चों के जुमलों को देखा करें कि वो बच्चे जब आपसे बात करते हैं तो अंदर क्या लेके बैठे होते हैं। इन बच्चों को देखिए इरादा कितना बुरा है, लेकिन माँ बाप के सामने कितने मस्कीन बन के आए हैं। इसी तरह हम किसी पे बदगुमानी नहीं करते, लेकिन 18, 19, 20 साल का लड़का है आपका, हमारा बच्चा है, कोई भी है, हो सकता है दोस्तों से बात की हो कि कोई बात नहीं आज रात चलते हैं किसी जरा नाइट क्लब में, चलो चलते हैं, कह के जाएंगे हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, चलेंगे कहीं, फिक्र ना करो, साथ अपने एक दो गर्लफ्रेंड्स को बिठा लेंगे। अब अव्वल तो इजाजत ही नहीं लेने आते, आज तो ये बता ही दें तो बड़ी बात है। सच बताएं क्या ये वक्त जाता नहीं जा रहा कि बच्चे इजाजत लें? बच्चे तो जाके रस्तों में बता दें तो बड़ी बात है, जब अम्मा फोन करे कि भाई आप घर क्यों नहीं आए, तो वो कहेगा नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं तो सुबह आऊंगा, मैं तो अपने दोस्तों के साथ हूँ। महसूस कीजिए इन खामोश सांपों को, याद रखिए हमारी नस्लों को हमसे दूर किया जा रहा है। अभी आप इस खतरे को इतना नहीं भांप रहे क्योंकि आप बहुत प्रोटेक्टेड माहौल में हैं, आप इस्लामी मुल्क में बैठे हुए हैं। इतनी औलादों की जरूरत बढ़ती जा रही है वक्त के साथ, अब सिर्फ 5 से 10 साल बाद देखिएगा कि घर के गुलाम और जो मुलाजमात का जो स्टेटस है ना, वो नहीं हमसे पूछ सकते कि बाजी जान कहाँ जा रही हैं। इस तरह हम अपने बच्चों से नहीं पूछ सकते, और आज भी खैर से ऐसे कम नहीं है, उन्होंने तो अपनी टोन ही इतनी सख्त बना ली हुई है कि अम्मा पूछे ही ना कि जा कहाँ रहे हो, कि जाते हो तो जाओ, मैं पूछ के क्यों बुरी बनो। इसको महसूस कीजिए, जितना किसी को सर पे चढ़ाएंगे फिर वो उतना आपके बोझ बनेगा ना, धीमा रखिए। मैं तो कहती हूँ बच्चे को रोज सुबह ट्रेनिंग दे, बचपन से साल से शुरू कर दे, ऐसे बैठो 5 मिनट आंखें नीचे करके बैठे रहो, 5 मिनट जरा घुटने टेक के बैठो, चलो मेरे पाँव दबाओ। मैं ये नहीं कह रही कि आप खुदा ना खास्ता उनको कोई थ्रेट करें, लेकिन ये आजिजी के अंदाज है, ये अदब के अंदाज है। आज भी आप देखिए, हम को इतने अच्छे लोग नहीं रहे अभी, लेकिन आज भी कोई बुजुर्ग अभी आएगा ना अंदर, या हमारे कोई चाचा मामू आएंगे, तो हम एकदम उठ के खड़े हो जाएंगे, उनको जगह देंगे। आज के बच्चे जगह देते नहीं। कभी आपने देखा, आप आए खाने की टेबल पे तो देखे आप, वो बच्चा अच्छी चेयर पे बैठा, तो कहते नहीं अम्मी आप इधर आ जाए, अब्बा को देख कर कोई करते। गाड़ी में भी उनको आगे बैठना है, जहां उनका दिल चाहता है गाड़ी रुकेगी, वो पूरा रास्ता आपको टीस करते रहेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे जाना है। आप 10 जगह उनको ले जाएं, वो कहेंगे वो 11वीं पे जाना था, मुझे वहां जाना है। ये हम अपने खिलाफ खुद गवाह तैयार कर रहे हैं। ये बच्चे कल हमारी आंखों की ठंडक नहीं रहेंगे अगर हमने इनको अभी से ना संभाला। और हमें कैसे आएगा बच्चों को पालना? हमें कुरान से आएगा। ये हमें कुरान सिखा रहा है ना। कहानी तो आप देखिए कि 5 मिनट में सुनाई जाती है, लेकिन एक एक लफ्ज में इतनी नसीहत है। फिर देखिए, इन्ना लहू लनासिखून। नासिख किसको कहते हैं? खैर ख्वाह, सिंसियर, वेल विशर। आई एम हिज वेल विशर, वी आर हिज वेल विशर। क्या वेल विशर थे? दिल में तो उसके कत्ल की बातें हैं, और मुंह से क्या कह रहे हैं, हम बहुत अच्छे थे। अच्छा, आज हम भी ऐसे ही करते हैं। और कहाँ करते हैं? रिश्तेदारों में, और खास तौर पे ससुराली रिश्तेदारों में। दिल में हमारे आग लगी होती है किसी के रिश्ता होने पे, इनका इधर क्यों होगा इतने अच्छे घर में, और जाके कहते हैं बड़ी खुशी हुई हमें, मुबारक देने जा रहे हैं। रास्ते में नराला से वो एक मिठाई का टोकरा भी ले जाते हैं। दिल में कुछ, जुबान पे कुछ, ये इखलास नहीं है। रिश्तों की मिठास खत्म हो जाती है दीन के बगैर। आप किसी रिश्ते को एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो उसको अल्लाह के दीन के मुताबिक लीजिए। मनाता लिल्लाह व मना लिल्लाह, जिसने दिया तो अल्लाह के लिए दिया, जिसने छीना तो अल्लाह के लिए छीना, उसने अपना ईमान पूरा कर लिया। आज रिश्तों में मोहब्बत क्यों नहीं है? सगी बहन के लिए दिल में क्यों मोहब्बत नहीं? सगे भाई के लिए क्यों नहीं? कब तक है? जब तक दूर है। पास है क्यों नहीं? क्योंकि तकल्लुफात में लिपटे हुए हैं। और 10 चीजें कोई कर दे, एक ना करे, तो हमारा दिल उससे नाराज हो जाता है। तो नासिख होना बहुत जरूरी है। और ये कब आता है? जब इंसान बिल्कुल ये सोच लेके जाए कि मैंने देना है, लेना नहीं। इस पे मैंने एक अलग लेक्चर किया था कि रिश्तों को कैसे हम जोड़ें, तो उसमें एक ये चीज थी कि उम्मीदें छोड़ दें। आप पहले से सोचे बैठे ना कि मैं जाऊंगी तो बस आगे तो ये हो जाना है, और मेरे लिए तो गाड़ियां लग जानी, और मुझे सुबह घुमाएंगे, इधर ले जाएंगे। यकीन करें, वो सारा दिन घुमाते रहेंगे, आधा दिन नहीं घुमाएंगे ना, फिर परेशान हो जाएंगे। आपके मैंने जाना है, मुझे किसी ने चाय का कप भी नहीं पूछना, फिर वो अगर खाली चाय भी पिला देगा ना, आप खुश आएंगे। घर से हम सोच के जाते हैं, जा रहे हैं देखना क्या मिलना है, और वो ना मिले, 10 चीजें मिल जाए, हम खुश नहीं होते। तो ये चीजें रिश्तों को तोड़ती हैं। आप अपनी खाला, मामी, नानू, जरा जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनसे पूछिए। हमारे वालिद की बात मुझे अच्छी याद आती है, और मैं हमेशा ऐसी बातें सदका जारिया के लिए सुनाती हूँ, जो लोग दुनिया से चले गए। तो वो कहते थे कि पहली छुट्टी होती थी हमें, जब घर आते थे तो हमारी खाला आके बैठी होती थी, टांगा साथ लेके आती थी, और हम पहले से यूं छुट्टी का इंतजार कर रहे थे कि जैसे क्या नेमत मिलने वाली है। और खाला ने कहा चलो जल्दी करो जल्दी करो, जो कपड़े होने, गठली बांधनी, खाला के साथ टांगे में जाना, पहली छुट्टी उसके घर गुजारनी, और आखिरी दिन भी जब आना तो खाला ने कहना बहन एक दिन और रह जाओ। इतनी खुशी होती थी, और कहते इतना मजा आता था। आप अपने सगे बहन भाई बच्चों के साथ 3-4 दिन कहीं आ जाए, फिक्र लग जाता है, उनको भी आने वालों को भी शर्म आ रही होती है, और रहने वालों को भी, और घर वालों को, कि ये टलेंगे कब। हमने तकल्लुफात को मोहब्बत समझा, असल बात ये कि आज हमारी जिंदगी में वो एसेंस ऑफ लाइफ तो नहीं है। हम किसी के आने पर 10 चीजें तो पका लेते हैं, वो उसके लिए नहीं पका रहे होते, अपने लिए पकाते हैं, क्योंकि लोग कहेंगे बड़े के घर में गए थे, खा के क्या आए। बहुत बारीक नुकते हैं जो हमारे तस्किए के, अभी तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सोचना जरूर चाहिए। एक ही काम आप कर रहे हैं वो अच्छा काम है इंशाल्लाह, लेकिन आपके सोच बदलने से वो आपके लिए वर्स्ट काम बन जाएगा। तो इन्होंने दिल में बुग़्ज़ रखकर बात बाप से क्या बनाई कि हम तो उसके बड़े खैर ख्वाह हैं। अच्छा जी, अब करिए क्या? अरसिल हुमाना गदन, कल इसको हमारे साथ भेज दें। क्यों? यरता व यलअब, कुछ खाए पिएगा, कुछ चरे चुगेगा। ये जो यरता का लफ्ज है ना, ये बड़ा खूबसूरत है। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्नैकिंग। एक होता है मील, खाना खाना, आराम से खाना खा लिया इंसान ने, पेट भर गया, अब 7-8 घंटे परवाह भी नहीं किसी को, के पानी भी पिए चाहे। एक होता है स्नैक्स, सारा दिन हाथ चलते हैं। आज कौन सा कल्चर है? स्नैक कल्चर है। अब आप पता नहीं मेरे खिलाफ ही ना हो जाए, मैं आपको आपके बच्चों के बारे में कह रही हूँ। यकीन कीजिए कि आज जिनको मैं देखती हूँ, मैं आप सबको तो इतना नहीं जानती, जाहिर है कि यहाँ हम थोड़ी देर मिलते हैं और खत्म, लेकिन मैंने क्या देखा है, माओं की गवाही है खुद। असल में हमसे लोग अपनी बातें डिस्कस भी करते हैं ना, हम कहती हैं जो खाना पकता है ना वो बस जी मेरे और मेरे शौहर के लिए पकता है। इतने तमाम से मासी जी से खाना पकवाया आपने, नेहारी कोरमा, चोलो बिरयानी पकवा ली, सब्जी गोश्त पकवा लिया, दाल गोश्त, जो भी पकवाया, खाता कौन है आखिर में? या मियाँ और बीवी, घर के नौकर, बच्चे के, एक का मैकडोनल्ड आ रहा है, एक की KFC आ रही है, एक का फुला आ रहा है, क्योंकि ये यरता का कल्चर है। चलिए स्नैकिंग कह देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जरा इस रवैये को भी देखिए, ये कितना ग्रीडी रवैया है। आप रोटी सालन खाएं, आपको उसके बाद 4 घंटे बाद भी कोई पूछेगा ना कुछ खा लो, तो आप कहेंगे नहीं नहीं खाना खाया। एक हाथ में चिप्स, एक में कोक, पहले तो देखिए दोनों हाथ है, जाहिर है कि लेफ्ट हैंड यूज करेंगे ना। आज क्या है कि चलते फिरते खाओ, फिर दूसरी देखिए जितनी दफा स्नैक्स के बैग में चिप्स में हाथ जाता है, क्या वो सीधे ही हाथ जाता होगा? बिस्मिल्लाह पढ़ते होंगे, हाथ धो के पढ़ते होंगे, कितनी सुन्नतें टूटती हैं। फिर इसके बाद देखिए हर वक्त ध्यान रहता है अब क्या खाऊं, क्योंकि ये स्नैक्स होते हैं, थोड़ी देर खाएं उसके बाद फिर दिल जाता है कुछ खाएं, 5-6 मिनट में फिर हजम हो गए, पहले नमकीन खा लिया, फिर मीठा खा लिया, फिर नमकीन, फिर मीठा। अब आप में सोच सकता है बहुत सारी माएं इस बात से इत्तेफाक करें, अब पीछे जाऊंगी तो अब नहीं करेंगे इत्तेफाक, ये आदत किसने डाली? माँ ने डाली। मैं देखती हूँ माए बड़े तपाक से कुरान पढ़ने आती हैं, साथ बच्चे को लेके आती हैं, उसके साथ इतना बड़ा बैग होता है, मैं कहती हूँ भाई किताबें तो इनकी थी, ये क्या, ये बच्चे का बैग है क्या? वो खोलो ना तो उसमें एक चिप्स का पैकेट निकाल के, थोड़ी देर में बच्चा बैठा, माँ खोलती है चिप्स का पैकेट, वो कुर्च 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 खाता है, फिर उसमें गिराता है, कुछ करता है। अब उसको प्यास लगती होती देर में माँ दूसरे हाथ से जूस का डब्बा निकाल के, अब वो जूस पिएगा तो उसको बाथरूम में जाना पड़ेगा, जब बाथरूम में माँ फारिग करा के आती उसको फिर भूख लगी होती, फिर बिस्कुट, वो सारे स्कूल में बिस्कुट फेंक रहा है। ये हम अपने बच्चों को ग्रीडी बनाते हैं। एक चीज जो मैंने अपने बहुत करीबी घर में देखी अपने, और मैं कहती हूँ कि ये बचपन से होता है, मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ, चले अब जाहिर ऐसी बात कोई बुरी नहीं है, मेरे हस्बैंड की आदत है कि जब वो खाना खा लेते हैं ना एक दफा बैठ के, जो भी देना है वही देना है, आप उसको ड्रिंक कह लें, उसको आप जूस कह लें, आप उसमें जो मीट, उसके बाद 8 से 10 घंटे मैं ना उनसे खाने का जिक्र करती हूँ ना उनके सामने बार बार उसका तस्करा करती हूँ, जिक्र से भी उनको चिड़ होने लगती है। पानी जबरदस्ती गर्मियों में बीच में कहीं पिला दूं, नमाज पढ़ के आए हैं तो पानी 2-4 घूंट लेंगे, खाने पे खाना ही खाना है। मैं बहुत परेशान थी कि हम पाकिस्तानी, तौबा, यकीन करें शादी के बाद जब मैं पहली दफा उनके साथ पाकिस्तान आई, मैं इतनी शर्मिंदा, हम जहां जाएं, अब जाहिर है आपको तो पहली दफा की शादी, दामाद और चचा खाला मामू पुप्पी जहां भी जाओ ये ला रहे हैं पानी, फिर थोड़ा क्या लाएं, पानी लाएं, अब क्या खाएंगे, शाम में क्या खाएंगे, मैं उनको इशारे करो चुप कर, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे पाकिस्तान में लोग सारा दिन खाते रहते हैं, सारा दिन खाते हैं, आप नाश्ता करते हैं, थोड़ी देर बाद आपके पास फ्रूट आ जाता है, उसके बाद चाय, फिर खाना आ जाएगा, खाने के बाद शाम की चाय, फिर उसके बाद रात का खाना, फिर आइसक्रीम। तो मैं कहूँ ना कि हम फोन करें कि ना करें, इस वक्त सो रहे होंगे, तो वो कहते हैं नहीं नहीं वो इस वक्त टिक्के खाने गए होंगे, वो इस वक्त बाहर गए होंगे, यानी रात के खाने के बाद भी लोग इतनी देर जागते हैं कि फिर उनको दोबारा खाना पड़ता है, तो इसीलिए तो वक्त नहीं मिलता। देखिए अब बातें बहुत दुखी हैं, यानी मैं माजरत चाहती हूँ कि अगर मेरी बातें आपको बुरी लग रही हो, जितने बाथरूम हमारे पाकिस्तान के घरों में है, वल्ला ही बाहर के घरों में नहीं है ऐसे। आप आज जाके अपने घर के बाथरूम गिन ले, आप लोग तो बादशाही जिंदगी बसर करते हैं कि अगर आपके नॉर्मल घर में भी आप देखिएगा 8-9 बाथरूम है, अटैच बात के अलावा तस्वुर ही नहीं, इवन बात सब में देखा करो, में दो ही बात होते हैं, एक का डोर अंदर खुला हुआ एक कमरे में, तो दूसरे का दूसरे में। किसी से नक्शा एक डिस्कस हो रहा था, मैंने कहा ये दो बाथरूम साथ साथ बनाने की क्या जरूरत है, एक का डोर इधर भी दे दो उधर भी दे दो, नहीं खाला, यानी ये क्या बात है कि आप अटैच बात ही ना हो। आपको होता है कि यूरोप पूरा घूम के देख ले आप, छोटे छोटे घर हैं, नीचे ऐसे घुसे तो पैसेज छोटा सा, उसी के साथ ऊपर एक सीढ़ी है, इसके साथ इस हाथ पे एक छोटा सा आप उसको हॉल कह लें, ड्राइंग बना लेते हैं कुछ लोग, कुछ लॉन्च बनाते हैं, और पीछे छोटा सा किचन, दैट्स इट। इस सीढ़ी से आप ऊपर जाएंगे इन्हीं के ऊपर कमरे, फिर तीसरे पे बाथरूम कहाँ होंगे, ये फर्स्ट फ्लोर है ना उस पर एक छोटा बाथ जिसको आप हाफ बाथ कहते हैं, वो उसमें शावर नहीं होता। सेकेंड फ्लोर पे जाएंगे 3 कमरे है ना, तो बीच में एक साझा बाथरूम, अटैच बाथ का तस्वुर भी नहीं है। एक बात है हर फ्लोर पे मैक्सिमम 3 बाय, और ऐसे पुराने घर वहां बीसियों क्या सैकड़ों होंगे, पूरे घर में सिर्फ एक बात होता है मिडल में, और थोड़ा सा और बैक जाए पुराने घरों में तो ये, जब इनका एक मिथ था कि घर के अंदर बाथरूम को होने को ये कहते थे कि जिन भूत आएंगे, आज भी टर्की और उसके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो घर पूरा बना हुआ है, फिर थोड़ा सा पीछे जिसको हमारे पहले दौर में सहन कहते थे, उसके बाद पीछे वाली दीवार के साथ सिर्फ बाथरूम होते थे, घर के साथ अटैच नहीं करते थे। हमारे घरों के अंदर अटैच बात है, और मजे की बात है वही जूतियां बाथरूम में जाती हैं, वही कमरों में फिरती हैं। हमें तस्वीर ही नहीं आता घर में बाहर वाला जूता लेके फिरे। ये कल्चर किसका? यरता का कल्चर है। जितनी दफा खाएंगे उतनी दफा आपको फिर यूज करना पड़ेगा ना। तो बहरहाल सफर में तो ये चल जाता है कभी कभी, लेकिन आम जिंदगी का ये हिस्सा नहीं होना चाहिए। फिर इसी से लालच है, सोच भी तो हर वक्त यही है ना, क्या ग्रोसरी आए, कब मंगवाएं, किधर जाएगी, किसको कहेंगे, सोचते ही रहते हैं। ढंग का खाना पकाइए और उसको फिर ढंग से खाइए, एनर्जेटिक चीजें होंगी, फायदा होगा। फिर ये जो चॉकलेट और मीठा खाते हैं बच्चों, से भूख मर जाती है, फिर क्या कुछ होता है। हाइपर मतलब एक्सपीरियंस मैंने किसी जगह पढ़ के सुनाया था, कोक का कैन उन्होंने चूहों को पिलाया, उछलने लग गए। इतनी चीनी, इतना कार्बोनेटेड वाटर है कि ये जो हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते ना, आप कई दफा डांटते सीधे होके बात करो, वो करें कैसे? आपने एनर्जी टैंक उसके अंदर भरा हुआ है, थोड़ा सा हाथ रख के।